अब बन रहा है थोड़ा सा स्पेशल ग्रेवी की करी, यानी कि चिकन हरा मसाला सालन टाइप का होगा, और उसी के साथ मैं दे रहा हूँ फिश। आज यहाँ सुरमई फिश के स्लाइस है मेरे पास, और खबतीन की फरमाइश थी कि जी अब फिश में तलना और सालन वाली फिश के अलावा भी कुछ फिश के बारे में हमें बताएं, तो आज मैं आप लोग को दे रहा हूँ फिश स्टेक। जी हाँ, उसके लिए स्लाइस सुरमई या कोई सी जो फिश आपके अवेलेबल हो, लेकिन हो जरा सी बड़ी और मोटी, तो उसके आप स्लाइस करवा लें। और उसी के साथ एक सैलेड होगी जो थोड़ा सा डाइट के हवाले से, और वो खबतें जो लवर हैं या वो फैमिलीज मेरे देखने वाले जो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं दस्तरखान पे सैलेड नए स्टाइल की, तो उनके लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ फिश स्टेक। फिश स्टेक के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि जो फिश मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है सुरमई। सुरमई के स्लाइस हमने करवा लेने विद बोन, क्योंकि उसमें एक ही कंघी एक ही कांटा होता है, और स्किन के साथ कैमरे की उससे आप देख लें कि सुरमई के जो स्लाइस हैं ये हमारे पास कंप्लीट हैं। आप चाहें तो सुरमई इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसी साइज की जो भी फिश आपको अच्छी लगती हो, लेकिन करना आपने ये कि एक इंच मोटे स्लाइस उसके कटवाने हैं। अब बना लेते हैं इसकी थोड़ी सी मिक्सिंग, यानी कि इसका अरोमा। जी हाँ, अदरक लहसुन का पेस्ट मैं ले रहा हूँ इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। उसी में ऐड कर रहा हूँ मैं नमक, और इसके साथ वॉर्चेस्टर सॉस है मेरे पास जो ले रहा हूँ मैं 4 टेबलस्पून। हमने इसके अंदर नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट और 4 टेबलस्पून वॉर्चेस्टर के ये ऐड करें। इसको मिक्स करने के बाद हम लेते हैं तकरीबन 3 से 4 अदद लेमन लेने हैं हमने 4, लेकिन इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ 3, और 1 रखेंगे हम इसकी गार्निश की मद के लिए। और ये 3 लेमन जूस जो है, तीनों लेमन का, ये अपने इसी सॉस जो बैटर हम इसका बना रहे हैं, जो टेक्सचर हम बना रहे हैं फिश स्टेक के लिए, उसमें ऐड कर लेंगे। अगर बहुत ज्यादा बड़े लेमन आपके पास आ जाएं तो बेशक आप उसको 2 कर दें, जरूरी नहीं है कि बड़े लेमन को भी आप 3 से 4 अदद यूज करें। छोटे हैं तो आप 4 ही यूज कीजिएगा, अगर बड़े हैं तो उसको 2 कर लीजिएगा। और इसी के साथ ये मेरे पास मस्टर्ड पेस्ट है जो बहुत आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा, 1 टेबल स्पून के बराबर मैं वो इस्तेमाल कर रहा हूँ इसमें। अच्छा जी, अजी हाँ, उसके साथ ही थोड़ा सा ये क्रश ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर जो जैसे मैंने आपके कल भी प्रोग्राम बताया था कि साबुत काली मिर्च लेके उसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, तो वो क्रश ब्लैक पेपर यानी कि कुटी हुई काली मिर्च बन जाती है, तो 1 टीस्पून के बराबर हम फुल भर के वो यूज़ करेंगे, और इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। और साथ साथ हम लेंगे थोड़ा सा इसमें ऑयल, जो नॉर्मल कुकिंग ऑयल आपके घर में हो, और चाहें तो ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं आप। ये देखें, और इसको हमने इतना मिक्स करना है अच्छे तरीके से कि जो ऑयल हमें नजर आ रहा है, मतलब जो अभी ऐड करा है हमने ऑयल, कैमरे की उससे देखेंगे आपको ऑयल नजर आ रहा होगा, देखें ऑयल नजर आया, तो ये ऑयल हमारा गायब होना चाहिए इसके अंदर। और उसका गायब करने का तरीका ये कि जब खूब अच्छे तरीके से हम इसको इस तरीके से हिलाते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक थोड़ा सा गाढ़ा भी होना शुरू हो जाएगा और ऑयल इसका खत्म भी हो जाएगा। इसके साथ एक कॉल है वो भी ले लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
जाकिर बात कर रहे हैं?
जी जाकिर बात कर रहा हूँ।
हाय अल्लाह, मैं इतनी देर से कॉल मिला रही थी, अब मिली है।
चलें, बड़ी खुशी की बात है, मिल गई, बात कीजिए मुझसे।
मैं कांगड़ा इनसे बोल रही हूँ, आपदा रमजान।
जी बात कीजिए।
मैं आपके प्रोग्राम की बहुत तारीफ करती हूँ, बहुत अच्छा जा रहा है।
बहुत शुक्रिया इज्जत देने का।
आप ना, मैं फरमाइश कर रही हूँ, आप हमें ना हरी सपना नाम बताए।
इंशाल्लाह जी, वो लिस्टों में हरी साहब, वो भी बहुत जल्द आ रहा है। हेलो
हेलो
जी जी बोले
हरी साहब बनाना खाए में
जी, वो हमने नोट कर ली आपकी फरमाइश, कोई और फरमाइश है आपकी? आई थिंक थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपकी फरमाइश थी हरीसे की वो हमने नोट कर ली है, बहुत शुक्रिया फोन करने का, काफी देर से ट्राई कर रहे हैं, तो देखें आपकी मेल भी गई और आपकी हमारी बात भी हो गई। अच्छा जी, इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स जब तक करते रहना है, इसको हिलाते रहना है कि जब तक इसका जो ऑयल है वो खत्म ना हो जाए। और ये समझने एक तरीके से ड्रेसिंग बन गई है हमारी फिश स्टेक की, और इसी के अंदर हम अपने फिश को मैरिनेट करेंगे इसी फ्लेवर में, और इसी के साथ भी हमारे पास ग्रिलर रेडी है जो बहुत आसानी से मार्केट में आ जाएगा। अब आप कैमरे की नजर से अगर देखें इसको जो मैं मिक्स कर रहा था, तो ऑयल इसका गायब होता जा रहा है, अब आपको ऑयल नजर नहीं आया। तो ये है वो तरीका कि इसको मिक्स करने के बाद ऑयल इसका सारा गायब हो जाएगा, और इस फिश को हम बहुत, क्योंकि सुरमई फिश होती है, सॉफ्ट है बहुत ज्यादा, इसको अच्छी तरीके से हम अपने इस बैटर जो बनाया है हमने सॉस वॉच लहसुन का, कुटी हुई काली मिर्च का, साथ में मस्टर्ड और लेमन जूस और नमक के साथ का, ये हम इसके अंदर इस तरीके से अच्छे तरीके से डुबो देंगे इसको, ये देखें, और इसको हम रखते हैं एक साइड में कुछ देर के लिए। पैन हमारा रेडी है, हम उसको थोड़ा सा क्लियर कर लें। अच्छा जी, फिश का तरीका मैरिनेट करने का आपने देख लिया, ये मैं बता चुका हूँ आपको कि आप चाहें तो इसकी जगह कोई और फिश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको यही फिश इस्तेमाल करें। और इसी के साथ अब हम तैयारी करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा मुझे फिश स्टेक, ताकि जो अरोमा है इसके अंदर वो फिश के मीट के अंदर तक अच्छी तरीके से चले जाए। उसके बाद पैन हमारे पास रेडी है, हमें सिर्फ इसको ग्रिल करना है, और उसकी टॉपिंग ड्रेसिंग जो होती है स्टेक की वो हमने बनानी है, तो वो हो जाएगा। और क्यों ना उसके साथ ही हम तैयारी कर लें अपने हरे मसाले की, टाइम को सेव करने के लिए। तो उसके लिए हम लेते हैं ऑनियन एक अदद, और इसको हमने बारीक काट लेना है। कढ़ाई कोरमा और जो सालन इस किस्म के, ये बिल्कुल वही चीज है, लेकिन फर्क है कि इसमें स्पाइसेस का थोड़ा सा अमल दखल चेंज है, यानी कि अरोमा। और मेरे वो देखने वाले हजरात और फैमिलीज जो डाइट के हवाले से या मिर्च मसाला बिल्कुल पसंद नहीं करते, उनके लिए एक बहुत अच्छी डिश रहेगी ये एज ए सालन। इसके साथ ही हम रेडी ले देते हैं यहाँ से पैन, और ऑयल का इस्तेमाल इसमें होगा तकरीबन क्वार्टर कप के बराबर। क्वार्टर कप ऑयल के साथ जैसे ऑयल थोड़ा सा तैयार मतलब गर्म हो जाए, तो हमने सबसे पहले ऑनियन इसमें वो करनी है, और ऑनियन जब थोड़ी सी हमारी पक जाएगी तो उसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और बाकी अरोमे ऐड करेंगे। तो ऑनियन हमारी कट चुकी है, एक अदद दरमियानी ऑयल के अंदर हम इसको ऐड कर देते हैं, और जब तक ये तैयार होगी ऑनियन हम काट लेते हैं इसकी चिकन। अच्छा, कुछ लोगों का सवाल था मेरे पास कि सर आप जो इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर चिकन ब्रेस्ट का इस्तेमाल करते हैं और लेग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, तो ये बताता चलूं मैं अपने उन देखने वालों को जिनके ये सवाल है कि चिकन ब्रेस्ट मैं बहुत ज़्यादा फैट नहीं होता, और चिकन लेग जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा फैट शामिल होता है, तो इस वजह से मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको डाइट के हवाले से और आपकी सेहत को देखते हुए और किडनीज को देखते हुए मैं ज़्यादातर चिकन ब्रेस्ट का इस्तेमाल करता हूँ। इवन इंटरनेशनल रेस्टोरेंट जो हैं या पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर, वहाँ पर भी 90% अगर चिकन इस्तेमाल होती है तो वो चिकन ब्रेस्ट का इस्तेमाल होता है। इसके साथ एक कॉल है, वो भी ले लें। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम,
क्या हाल है?
आपकी दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक ठाक।
हाँ जी, आपने जो अचार गोश्त बताया था ना, बहुत मजे का बना।
बहुत शुक्रिया, अपना नाम दीजिए मुझे। अपना
नाम रुखसाना मजर।
रुखसाना मजर कहाँ से बात कर रही हैं?
मैं लाहौर से
जी। रुखसाना बहुत शुक्रिया उसको पसंद करके उसको बनाने का।
और जी वो हमें वो सिखाए ना चिकन मंचूरियन।
चिकन मंचूरियन जी, चिकन मंचूरियन तो मैं 2-3 दफा सिखा चुका हूँ लेकिन आपकी फरमाइश।
तब हमारी लाइटें जाती हैं, इतना मसला हुआ है ना हमें।
अच्छा जी, चले मैं आपकी फरमाइश नोट कर
ले। मेरी बहन है अजरा, इससे बात करें
जी।
हेलो
जी, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम
वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी,
क्या हाल है?
आपकी दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक ठाक
जी। मुझे हरीसा सीखना था आपसे
जी। हरीसा की हमारे पास फरमाइश है और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मैं हरीसा बना रहा हूँ।
एक तो ये लाइटों का खत्म हो तो कुछ देखें भी हम।
हाँ, लाइटों का
प्रोग्राम देखा जाता है।
लाइटों की शिकायत वाकई बहुत आ रही है कि लोड शेडिंग या लाइट की प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज्यादा, लेकिन उसके लिए हमने
अचार गोश्त बनाया था, बहुत मजे का बना।
बहुत शुक्रिया जी पसंद करने का।
बस आप इसी तरह सिखाते रहिएगा
इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह आपके ताबून आपकी दुआएं साथ
रहें। अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे।
आमीन सुमा आमीन जी।
चले जी ठीक है, ओके
थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, जब देखें कि ऑनियन हमारी थोड़ी सी पकना शुरू हो गई है और ब्राउन की तरफ आना शुरू हो गई, लेकिन बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं, मतलब ब्राउन के करीब आना जा रही, तो उसके अंदर फिर हम थोड़ा सा गर्म मसाला साबुत गर्म मसाले में 2 अदद मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। ब्लैक काली इलायची जो होती है बड़ी वाली जिसको ब्लैक कार्डियम कहते हैं वो ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर। थोड़ी सी इसके अंदर मैं लौंग जीरा और काली मिर्च और साथ में जायफल जावित्री, बहुत ज्यादा मिकदार नहीं चाहिए, बहुत हल्की सी, ठीक है। लौंग हो गई, काली मिर्च हो गई, बड़ी इलायची हो गई, बहुत हल्की सी जायफल जावित्री, यानी कि 1/4 लीफ जायफल की और उसी के साथ जावित्री, ये जहन में रख के इसके अंदर गर्म मसाला हमने ऐड करा है ताकि उसका अरोमा भी अच्छे तरीके से हमारी इस ग्रेवी जो हम बनाएंगे उसमें रच बस जाए। और इसी के साथ देखें प्याज जो है हमारी वो थोड़ा सा गोल्डन कलर में आती जा रही है, तो हम रेडी कर लेते हैं अपना अदरक लहसुन, क्योंकि अगर प्याज अब बहुत ज्यादा लाल हो गई तो शायद ये आपका ग्रीन मसाला ना बन पाए। इसी के साथ प्याज मैं दिखाता चलूं अपने देखने वालों को कैमरे की मदद से कि प्याज देख लें ये कलर का प्याज होना चाहिए, बहुत ज्यादा ब्लैक और बहुत ज्यादा व्हाइट ना हो। और उसी के अंदर मैं अदरक लहसुन तकरीबन 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन के मैं ऐड कर रहा हूँ और इसको हम करेंगे मिक्स अच्छे तरीके से। और उसी के साथ ये जो चिकन हमने काटी थी ये ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा कटिंग बोर्ड की क्लीन और इसके बाद देते हैं इसको थोड़ा सा दूसरा अरोमा। इसको भूनना है हमने अच्छी तरीके से ताकि चिकन का जो पानी है वो खुश्क हो जाए और अदरक लहसुन और प्याज का जो अरोमा है और इसमें जो गर्म मसाला हमने ऐड करा है सबसे पहले चिकन में वो जायका चला जाए। बाकी जो स्पाइसेस हैं नमक और दूसरे जो फ्लेवर हैं वो हम इसको थोड़ी देर के बाद देंगे ताकि वो सेकेंड अरोमा बने। तो जब हम सर्व करें मेहमानों को तो वो जब इसको खाएँ तो उनको हर चीज़ का जायका अलग-अलग मिले कि हाँ वाकई इसके अंदर ये भी है, इसमें ये भी है और इसमें ये भी है। इस स्टेज के ऊपर मैं दे रहा हूं इसमें नमक, नमक जब हम डाल दें इसके अंदर तो ये याद रहे कि जब चिकन का कलर ऊपर से व्हाइट आ जाएगा उसके बाद हम नमक ऐड करेंगे। और नमक जब जिस वक्त डाल दें तो थोड़ा सा हम इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसका फ्लेम को हम बिल्कुल बंद कर देंगे, क्योंकि बारी अब हमारे दही इस्तेमाल करने की यानी कि योगर्ट डालने की। लेकिन उसको डालने से पहले क्यों ना हम ले लें एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। से वापस आ चुके हैं। जी हाँ, चिकन मैंने बंद कर दिया था ताकि चूल्हा, ताकि योगर्ट जो है, मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि क्रीम और योगर्ट जब भी हम अपने किसी खाने में ऐड करें तो प्लीज उसका जो टेम्परेचर है उसको थोड़ा सा कम कर लें ताकि वो चीज़ ख़राब ना हो जाए, यानी कि ये ना हो कि जैसे हमने ऐड करा तो वो फट जाए। अच्छा, जब योगर्ट हमने डाल दिया तो इसको योगर्ट को थोड़ा सा हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। ये देखें, ये मिक्स कर दिया इसके साथ। और जी हाँ, अब बारी है इसकी एक बहुत ही जो क्या कहते हैं टच, जो स्पेशल टच है वो देने की। तो उसके लिए मेरे पास 3 अदद ग्रीन चिली में ले रहा हूँ, 6 से 7 अदद ग्रीन चिली का इसमें काम है। लाल मिर्च पीसी भी पाउडर या कुटी भी लाल मिर्च का कोई इस्तेमाल नहीं है, हल्दी का कोई इस्तेमाल नहीं है। तो जो अरोमा हमने देना है वो इसको देना है धनिया से और ग्रीन चिली से। तो 3 अदद ग्रीन चिली मैं रख रहा हूँ साबुत अपनी कुकिंग के दौरान, और 3 अदद मैं अपने जो जूसर मशीन है जिसमें मैं इस धनिया के साथ इसको पेस्ट करूँगा उसके लिए मैंने रखी है। और इसी में थोड़ा सा हम ऐड कर देते हैं पानी। और इसको बना लेते हैं हम बहुत अच्छा तरीके से एक पेस्ट, यानी कि ग्रीन कलर का, जिसमें सिर्फ अब तेल धनिया है और थोड़ी सी 2 से 3 अदद ग्रीन चिली है। इसको ज़्यादा हमने और कोई फ्लेवर या अदरक या लहसुन या टमाटर या प्याज कोई और चीज़ इसमें ऐड नहीं करनी, क्योंकि प्याज 1 अदद जो चाहिए थी वो हम ले चुके हैं। ये हमारा टेक्सचर तैयार है, अब बारी है अपने इसको रेडी करने की। तो इसको थोड़ा सा बारी है योगर्ट डालने के बाद भूनने की, और साथ साथ हम इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं गरम मसाला। मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ 1/2 टीस्पून के बराबर, और जीरा पाउडर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इसमें 1/2 टीस्पून के बराबर। ये 2 चीज़ें हमने इस्तेमाल करी हैं इसमें फ्लेवर और अरोमे के लिए। और ये जो हमारे पास 3 अदद ग्रीन चिली हमने बचाई थी इसको हमने 1 की 2 करना है, और स्ट्रेट अपने डिश के अंदर। कुछ खाने में बता चुका हूँ अपने देखने वालों को कि एक साथ मसाला डाल के जब हम खाने बनाते हैं, मिसाल के तौर पर अमूमन मैंने देखा है घरों में कि कढ़ाई या कौरमा जो बनाते हैं वो सारा मसाला उन्होंने एक साथ डाला और चूल्हा, इवन कि बिरयानी, सारी चीज़ें डाली और उन्होंने चूल्हा जो स्टोव है उसको खोलना है और जैसे तैयार किया उसमें चावल देके दम देखे बिरयानी। तो ठीक है, घर के हद तक ये चलता चला आ रहा था ये सिलसिला, और किसी हद तक बेहतरीन भी था क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। लेकिन जब बात आती है जायके की और अरोमे की, जिसके लिए हम रेस्टोरेंट जाते हैं, बिरयानी घर की नहीं आज कहीं चल के बाहर खाते हैं या कौरमा चल के कहीं बाहर खाते हैं, तो जब रेस्टोरेंट्स में हम खाना खाने जाते हैं तो वही बिरयानी और वही कौरमा खाते हैं जो हम घर में बनाते हैं। और उस वक्त डिनर टेबल पे हम बैठ के ये सोचते हैं, अमूमन ख़वातीन के जहन में ही होता है कि देखें कितने अच्छे कबाब हैं, कितने नरम कबाब हैं, ये कितना अच्छा कौरमा है, ऐसा कौरमा मुझसे क्यों नहीं बनता। वो बेशक किसी से कहे ना, लेकिन अपने आप से उनका सवाल ज़रूर होता है। इसके साथ एक कॉल है कि वो काफ़ी देर से होल्ड पे थी और आई थिंक होल्ड पे थी और जा चुकी हैं। तो वो ये सवाल ख़वातीन करती हैं अपने आप से कि ये जायका हमारे हाथ से क्यों नहीं आता। तो उसकी मेन वजह मैं आपको बता दूं आज, कि जो स्टेप बाय स्टेप स्पाइसेस जब हम ऐड करते हैं तो उसका अरोमा उसी लेवल पे बनता है, और जब वो सर्व होता है तो खाने वाले को उसका मजा भी आता है और हर फ्लेवर का जायका अलग मिलता है। लेकिन जब उन सारे फ्लेवर को हम एक साथ मिला दें और एक ही वक्त में एक साथ पका दें तो वो उनका जायका समझ में नहीं आता, क्योंकि वो एक दूसरे से मर्ज हो जाता है, मिल जाता है, मिक्स हो जाता है। लेकिन जब वन बाय वन करके हम स्पाइसेस ऐड करते हैं अपने खाने में तो उसका फ्लेवर इंडिविजुअल रहता है, कभी भी एक दूसरे से मिलेगा नहीं। अच्छा, इस स्टेज के ऊपर इसको हम थोड़ा सा करते हैं क्लोज, ताकि एक कॉल भी है वो भी लेने। अस्सलाम वालेकुम। हेलो।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम।
सर मैंने कल भी कॉल की थी, मेरा नाम रिजवाना है।
रिजवाना,
लाहौर से बात कर रही हूँ।
जी जी बोले।
सर मैंने आपसे ये कहना था, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अभी हमें रेसिपी बता दें इसकी, चटनी की, आलू बुखारे की चटनी की। आप लाइव बता दीजिए।
अरे मैं लाइव बता देता हूँ, लेकिन देखिए अगर मैं जबानी बता दूंगा तो वो मजा नहीं आएगा। आलू बुखारे की चटनी मैं दो तीन दफा बना चुका हूँ, इंशाल्लाह ताला आगे प्रोग्राम में।
सर मेरी सिस्टर एक्चुअली आई है तो उन्हें हमने अभी सब कुछ अरेंज कर लिया, लेकिन अभी हमें उसका
रेसिपी। अच्छा चले चले चले, कोई बात नहीं, मैं आपके खातिर जब इतनी है वो करेंगे, मैं आपको ऑनर बता देता
हूँ। मेरी सिस्टर से बात कर लीजिए।
जी बात कराइए।
हेलो।
जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम
सलाम।
सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें अभी इसकी रेसिपी बता दें आलू बुखारे की, क्योंकि मैं कसूर से आई हुई हूँ, मेरे वहाँ नहीं आता मसाला जनरल।
अच्छा जी, मेरी कोशिश है कि मैं आपको अभी इसको गाइडलाइन दे दूँ आपको कि किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, कोई और बात करनी है तो मुझे बता दें।
आपका प्रोग्राम मैं कल से आई हूँ, देख रही हूँ, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा अच्छा है ये चैनल।
बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया इज्जत देने का।
थैंक यू जी, अभी आपको अभी बता दें तो बड़ी मेहरबानी होगी।
चले जी, मैं ऑन एयर आपको बता रहा हूँ, बहुत शुक्रिया जी। आलू बुखारी की चटनी का जिससे फरमाइश आई है हमारे पास, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं आपको बना के दिखाऊं, लेकिन आप लोग पीछे थे तो उसके लिए सिंपली मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको कि आलू बुखारे को, अगर एक पाव आलू बुखारा तो उसमें आधा पाव के करीब चीनी होगी। आलू बुखारे को धो लें अच्छे तरीके से और तकरीबन एक गिलास पानी के अंदर उसको उबलने के लिए चढ़ा दें, और उसी में वो एक पाव आलू बुखारे में आधा पाव चीनी डाल दें, और उसी के अंदर थोड़े से अगर आप चाहें तो तिल डाल दें, थोड़ा सा खोपरा भी डलता है किसी जगह, और किसी जगह थोड़ा सा नमक और काला नमक भी डलता है उसके अंदर। ये दो तीन फ्लेवर हैं आलू बुखारे की। और अगर इसको ज़रा चटपटा आपको करना है तो बेशक एक या दो साबुत वाली जो लाल मिर्च होती है वो इसमें डाल दें, और इसको बहुत धीमी लो पर पकने दें। इतना पकाएं इसको कि आलू बुखारा पक के नरम हो जाए और चीनी का दाना ख़त्म हो जाए, और वो जो एक गिलास पानी है वो गाढ़ा हो जाए। जब वो देखे कि हाँ जी गाढ़ा होगा तो थोड़ा सा ड्रॉप कर दें इसमें ऑयल का। ऐसे आलू बुखारे की चटनी आपकी तैयार है। और अगर इसको स्पाइसी देना है वो मैंने आपको बता दिया है, वो आपके ऊपर है। तो आप इसमें सूखी जो लाल मिर्च होती है गोल वाली, वो दो या तीन दाने डाल दें, ताकि वो इतनी पकने के बाद वो खुद ब खुद नरम होके और टूट जाएगी और आलू बुखारे में मिल जाएगी। ये थी आलू बुखारे की बहुत क्विक सी चटनी की रेसिपी। इसके साथ एक कॉल है वो भी ले लें। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
जाकिर साहब कैसे हैं?
आपकी दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक ठाक
जी। अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे और हमेशा आपको खुश रखे।
आमीन।
और आपसे आपका प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा अच्छा है।
बहुत शुक्रिया
जी। आप जो हैं अच्छी अच्छी तरकीबें बताते हैं अल्लाह मियाँ। मैंने पिज्जा बनाया था
जी,
उसकी
जी।
जो डो थी ना वो काफी पतली होके ना बहुत ज्यादा फूल गई थी।
नहीं तो आपने अब डो को बहुत ज्यादा पतला बेल दिया हुआ। मैंने कल भी जो पिज्जा बनाए थे अगर आपको याद हो तो मैंने क्लियर करके सारी चीजें बताई थी इंडिविजुअली कि इसको बहुत ज्यादा पतला नहीं कीजिएगा और बहुत ही ज्यादा ब्रेड की तरह मोटा मत रखिएगा। ठीक है
जी।
दोबारा ट्राई करें, आपने जो प्रोग्राम देखा है कि उसके जो भी मैंने तरीका बताया उसको फॉलो अप करके, तो इंशाल्लाह ताला आपका पिज्जा वैसे ही बनेगा जैसा आप चाहती हैं।
आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है।
बहुत शुक्रिया जी।
अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, अपने देखने वालों को बताता चलूं कि इसको हमने जो फ्लेम है हमारे चूल्हे का उसको थोड़ा सा स्लो कर लेना है, क्योंकि थोड़ा सा धीमी लो पे इसको पकना चाहिए, ताकि ये ना हो कि अगर चूल्हे का जो फ्लेम है वो बहुत ज़्यादा तेज हुआ तो उसका जो टेक्स्चर है, इसकी जो ग्रेवी है वो ड्राई हो जाएगी। वो ड्राई नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो उसी जूस में, चिकन का जो जूस होगा और योगर्ट का जो पानी होगा उसी के अंदर वो पकनी चाहिए। उसी के साथ थोड़ा सा हमने धनिया और अदरक को चॉप करके रेडी कर लिया है। और अब इस स्टेज पे बारी है इसके अंदर ये जो धनिया और हरी मिर्च पीसी भी थी उसको ऐड करने की, तो ये हम ऐड कर देते हैं स्ट्रेट अपनी इस ग्रेवी में। एडिशनल पानी हमने इसमें नहीं ऐड करना है, याद रहे प्लीज। हमने सिर्फ जो थोड़ा सा आधा कप पानी धनिया को पीसने के लिए इस्तेमाल करा है वो इस्तेमाल रहेगा बस, इसके अलावा इसमें पानी हमने ऐड नहीं करना है। वो जो योगर्ट का जो पानी बनेगा और अदरक लहसुन और चिकन का जूस होगा उसके अंदर ये पकेगी। और अब बारी है इसको अच्छे तरीके से पकाने की, यानी कि इसको भूनने की। आम जो सालन बनते हैं जैसे कढ़ाई बनती है या कौरमा बनता है वो काफ़ी देर में बनता है खवातीन से, ये वो चीज़ है कि आपने दो तीन मसाले इसमें डालने, सिर्फ आपने इसको भूनना है और डिश आपकी तैयार हो गई। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा देर की, इवन कि आपके मेहमान आ जाएं घर के अंदर और बैठ जाएं और आपको प्रॉब्लम हो रही हो फूड की, तो आपको घबराने की और डरने की ज़रूरत नहीं है। जितनी देर में आपके मेहमान कोल्ड ड्रिंक का गिलास ख़त्म करेंगे आप ये खाना बना के उनके सामने रख सकती हैं। करना सिर्फ ये कि बाज़ार से रोटी ज़रूर मंगवा लीजिएगा क्योंकि रोटी में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। प्याज का अरोमा इसके अंदर आ चुका है, हरी मिर्च की जो तेज़ी होगी क्योंकि पीस भी दी है हमने और साबुत भी ऐड करिए, धनिया का जो सोनापन है फ्रेशनेस वो इसमें आ चुकी है, और जी हाँ जो बाकी छोटी बहुत कसर होगी वो जो दही का अरोमा बनेगा वो। गर्म मसाला और ज़ीरा पाउडर का अरोमा आपको मालूम है, साबुत गर्म मसाला जब हमने प्याज के साथ भुना था तो उसकी महक बिल्कुल कोरमे वाली टच आ जाएगी। तो ये एक ऐसी आपकी ग्रेवी बन जाएगी सारी चीज़ों का रूम में को शामिल करके कि जब हम इसको सर्व करेंगे अपने मेहमानों को, इवन कि आप खुद अपनी फैमिली के साथ खाएं तो आपको वाकई मज़ा आएगा कि कोई स्पेशल चीज़ खा रहे हैं आज। इसलिए इसका नाम हरा मसाला है, चिकन हरा मसाला। इसको अच्छी तरीके से हमने पकाना है यहाँ तक कि इसमें जो हमने चिकन का जो ऑयल था थोड़ा सा और जो एडिशनल ऑयल हमने यूज़ करा है इसमें क्वार्टर कप वो हमें नज़र आना शुरू हो जाए और ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। ये थी वो ट्रिक जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि खबातीन प्लीज़ इसको ओवर कुक ना कीजिएगा। अगर आपने इसने किसी भी वजह से आपने इसको ओवर कुक कर दिया तो धनिया पकने के बाद याद रहे कि काला होना शुरू हो जाता है, पुदीना पकने के बाद काला होना शुरू हो जाता है। ये ना हो कि आप इसको रख के चूल्हे पे और कवर करके अपने दूसरे कामों में चली जाएं और 10-15 मिनट बाद जब वापस आप के इसको ढक्कन हटाएं तो पता चले आपकी ग्रेवी का जो कलर है वो ब्लैकिश हो चुका है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि आपकी ग्रेवी काली ना हो। इसको भूनते रहना है, इसको चलाते रहना है, इसको देखते रहना है कि कितना ग्रेवी आपको रिक्वायर्ड है। अच्छा जी, अब साथ साथ इसको भी देख लें, ये जो फिश की ग्रेवी हमने टेक्सचर बनाया था सॉस का, तो अब उसको थोड़ा सा साइड टर्न कर दें ताकि दोनों साइडों पर उसका जो अरोमा है वो अच्छी तरीके से बच जाए। और पैन को हम ऑन करते हैं अपने जो ग्रिलर हैं और इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल, बहुत ज़्यादा ऑयल क्योंकि ऑयल हमारे पास उसमें भी है जो हमने टेक्सचर बनाया है इस फिश का, और थोड़ा सा ऑयल अपने हम ग्रिलर पे भी लगा लेंगे ताकि ग्रिलर जो है थोड़ा सा ऑयली हो जाए। आपकी ईमेल्स बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं, ये देखें आज भी माशाल्लाह ताला मेरे पास ईमेल हैं काफ़ी, और जैसे जैसे टाइम है थोड़ी थोड़ी ईमेल भी मैं साथ साथ पढ़ता जाऊं। साइमा नोमान ने कहाँ से ईमेल करी है, साइमा आपने भी अपने शहर का नाम नहीं लिखा, तो प्लीज़ अपने शहर का नाम ज़रूर लिख दिया करें ताकि हमें आसानी हो आपकी ईमेल को अपने प्रोग्राम में शामिल करने की। देखती कि मैं मसाला टीवी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ ज़ाकिर भाई, प्लीज़ मुझे डबल रोटी यानी कि बनाना सिखा दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो साहिमा इंशाल्लाह ताला जब केक एंड बिस्किट में शुरू करूँगा तो उसमें आपकी सारी फरमाइशें ज़रूर पूरी होंगी। और नूर गुलशन इकबाल से लिखती हैं, ज़ाकिर मैं आपका प्रोग्राम बाकायदगी से देखती हूँ, ज़ाकिर प्लीज़ हमें अमेरिकन और इटालियन डिशे बनाना सिखा दें और प्लीज़ प्रोग्राम में कॉल कम कर दें, कुकिंग के दौरान कॉल को बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है, जब आप कुकिंग छोड़कर इनसे बातें करने लगते हैं तो देखिए इस स्टेज पे मैं आपको ये जवाब दे दूँ कि कॉल्स भी जो होती हैं वो आप ही लोग की तरफ से आती हैं और कुछ मसले ऐसे होते हैं कि जिसमें ख़वातीन मुझसे बात करना चाहती हैं, डिस्कस करना चाहती हैं, आम हालात में तो ये मुमकिन नहीं होता। लाइफ का मकसद जो है मतलब कुकिंग का, वो मकसद सिर्फ खाना बनाना नहीं है, वो मकसद ये है कि आप लोग के साथ मैं बिल्कुल एज ए लाइफ रहूँ। कि मिसाल के तौर पर कि अभी मैं चिकन हरा मसाला बना रहा हूँ, अगर कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे इमीडिएटली फोन करके उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो लाइफ की जो बेसिक ओरिजिनल वजह है वो यही है। यही प्रोग्राम हम रिकॉर्डेड करके भी आपको दे सकते हैं जिसमें कॉल का कोई अमल दखल नहीं होगा, लेकिन फिर बात वही हो जाएगी कि अगर जरा सा कोई मसला आपको पूछना हो तो फिर आप किससे पूछें, फिर आप हमें खत लिखें या ईमेल करें, उसका जवाब कितने दिन में आप तक जाएगा या हमें कितनी देर में वो खत मिलेगा, तो ये सारे प्रोसेस है। तो इसी वजह से लाइफ का जो मसला होता है कि आप कॉल करें, लेकिन ये जरूर मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने कॉलरों से जो मुझे कॉल करते हैं कि प्लीज कॉल करने से पहले सोच लें कि क्या आपने मुझसे बात करनी है, और मुख्तसर बात करें ताकि दूसरों को भी टाइम मिल जाए और जो प्रोग्राम देख रहे हैं बाकायदगी से खाने की वजह से तो वो भी परेशान ना हो। इसके साथ एक कॉल है वो भी ले लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
शुक्र खुदा का मेरी लाइन तो मिला के थक गई मैं भाई।
चलें, बहुत खुशी की बात है आपकी कॉल मिल गई, बात कीजिए।
मुझे केक बनाना सिखा दी मायने पिन का, मेरी बेटी की सालगिरह है 15 तारीख को।
अच्छा जी, इंशाल्लाह ताला जरूर।
बहुत बहुत आपकी मेहरबानी होगी, बहुत बहुत आप मुझे केक बनाना सिखा दे। और हलीम,
और दूसरी क्या बताया आपने?
हलीम बनाना सिखा दे, हलीम 9 तारीख से पहले।
चले जी इंशाल्लाह ताला।
आपके सारे खाने इतने जबरदस्त होते हैं, इतने अच्छे होते हैं, कोई डिश ऐसी नहीं है कि जो खराब बनती हो। मैंने बहुत सारी डिश आपकी इस्तेमाल करी है, अभी बनाई होंगी, बहुत ही अच्छी।
बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से आपको, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम को इतना पसंद करती हैं, बहुत शुक्रिया।
आप तो हमारे घर के फर्ज की तरह है, बिल्कुल आपसे बात पहली दफा हो रही है, बिल्कुल घर के फर्ज की तरह हो गया।
चले जी, बहुत शुक्रिया इतनी इज्जत देने का और इतनी मोहब्बत देने का। और ये
केक बनाना जरूर जरूर सिखा दे, मेरी बेटी ने बोला जाकिर भाई अगर बताएंगे तो फिर मेरी सालगिरह मनाइएगा, वरना मैं नहीं बनाऊंगी।
अच्छा ऐसा करता हूँ ना, मैं आपके घर आ जाता हूँ और आपकी बेटी की सालगिरह के लिए केक अपने हाथ से बना के उनको
देता हूँ। क्या ख्याल है? वेलकम।
ठीक है, चले ठीक है,
इसे पहले बना दे, बहुत मेहरबानी होगी।
चले इंशाल्लाह जरूर, मैं पूरी कोशिश होगी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। इसको जो ग्रीन मसाला साथ साथ उसको भी देखते जाना है कि उसकी जो लुक है, जो टेक्चर है, ग्रेवी है, वो ये रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाए या बहुत ज़्यादा वाटरी हो। तो एक मखसूस ख़वातीन को बड़ी अच्छी तरीके से अंदाजा होगा कि ग्रेवी कहाँ पे गाढ़ी हो रही है, वहाँ पे हमने इसको रोक के सर्व कर देना है। और वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, तो क्यों ना एक छोटा सा ब्रेक लें। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जी हाँ, हरा मसाला हमारा कंप्लीट हो चुका है। ज़रा सा आज चूल्हा में क्लोज कर दिया था ब्रेक पे जाने की वजह से, उसको थोड़ा सा ऑन कर लेते हैं ताकि उसका जो टेक्सचर है वो स्मूथली बन जाए। और कैमरे की नज़र से अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका हरा मसाला कितना स्मूथ और टेस्टी बन चुका है। बारी है इसको डिश आउट करने की। कि माने जब ये आप बनाएंगे घर के अंदर तो इसकी महक पूरे घर में होगी। और ये अदरक और जो हमने धनिया काटा था थोड़ा सा हम इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। अच्छी आ गई आपका चिकन हरा मसाला। याद रहे चिकन हरा मसाला कॉम्बिनेशन बनेगा कोरमा और कढ़ाई का, लेकिन लुक और इसका जायका डिफरेंट होगा बिल्कुल। इसके अंदर पिसी भी लाल मिर्च या कुटी भी लाल मिर्च या इससे रिलेटेड किसी किस्म का या हल्दी का कोई इस्तेमाल नहीं है इसमें। सिर्फ हमने हल्का सा गर्म मसाला यानी कि 1 टेबल स्पून के बराबर, और जी हाँ जीरा पाउडर का इस्तेमाल करा है जो 1/2 टीस्पून के बराबर था। उम्मीद है कैमरे की नज़र से आपने देख लिया होगा इसका कलर कम्बिनेशन। अब हम चलते हैं अपने जी हाँ फिश स्टेक की तरफ। तो फिश स्टेक के लिए हमने करना सिर्फ यही है कि अपने पैन को गरम करना है और उसको थोड़ा सा ऑयली कर लेना है। ऑफ फिश, जो सुरमई है हमारे पास, वो अपने जो हमने टेक्सचर बनाया था इसका ग्रेवी अरोमा उसके अंदर जाके बहुत अच्छी तरीके से मैरिनेट हो चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा 10-15-20 मिनट से ज़्यादा इसको मैरिनेट ना करें, क्योंकि सुरमई ऑलरेडी बहुत नरम और सॉफ्ट फिश होती है। अगर हम इसको ज़रूरत से ज़्यादा ग्रेवी या सॉस के अंदर मैरिनेट करके छोड़ देंगे 1-2 घंटे के लिए, तो ये माइट पॉसिबल है कि टूट जाए या चूरा हो जाए आपके पकाते में। और इसके लिए करना ये है कि पैन को बहुत अच्छी तरीके से गर्म होना चाहिए, जो ग्रिल आपका पैन है। अगर पैन ठंडा हुआ तो भी इसके टूटने के चांसेस हैं, तो टूटना नहीं चाहिए। इसका मज़ा यही है कि बिल्कुल स्ट्रेट जैसे हम रखें तो ये वहाँ पकना शुरू हो जाए, और फिर साइड चेंज करें और वहाँ से भी पकना शुरू हो जाए। इसकी जो कुकिंग की जो तरीका है वो भी थोड़ा सा एहतियात वाला है। अगर ज़रा से भी हमने बेहतियाती इसमें करी तो आपका फिश स्टेक नहीं बल्कि फिश का चूड़ा हो जाएगा। इसके साथ एक कॉल है, वो भी ले लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो।
हेलो
जी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है?
आपकी दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक ठाक।
मैं लाहौर से अली रजा बात कर रहा हूँ।
जी अली रजा साहब, क्या पूछना चाहेंगे?
सर आप एक तो आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करनी है।
बहुत शुक्रिया सर देने का।
सर क्या आप जबरदस्त, सही बात है, मैं समझता हूँ कि आपने तो हमारा किचन सजा दिया।
बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।
एक और आपको मजे की बात बतानी थी।
जी जी बताइए।
सर मेरी बेटी है छोटी 9 माह की।
माशाल्लाह।
तो वो जब आपका प्रोग्राम जैसे ही स्टार्ट होता है
जी जी
वो हर चीज छोड़ देती है।
अरे
और इससे गौर से सुनती है आपको, जैसे इसने भी हमें पका के खिला देना।
अच्छा माशाल्लाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है।
सर मेरा ख्याल आपकी आवाज में भी कोई जादू है ना?
नहीं सर, ये सिर्फ आप लोग की मोहब्बत और अपनाइयत है जो इतना आप लोग मुझे पसंद करते हैं और दुआएं देते हैं और उस प्रोग्राम को इतनी तवज्जो से देखते हैं। हम रियली दिल से आप लोग सबके शुक्रगुजार हैं कि इतनी मोहब्बत आप लोग हमें देते हैं।
सर आपका भी हम बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने इतना कुछ आप सिखा रहे हैं, इतना मजे मजे का सिखा रहे हैं, जबरदस्त किस्म का सिखा रहे हैं कि मजा आ जाता है।
बहुत शुक्रिया सर इज्जत देने का।
सर और एक छोटी सी फरमाइश है।
जी जी फरमाइश कीजिए।
सर आप पहले भी सिखा चुके हैं ड्रम स्टिक्स, लेकिन एक दफा फिर आप प्लीज उसको रिपीट करेंगे?
चले इंशाल्लाह आपकी फरमाइश हम नोट कर लेते हैं और ड्रम स्टिक जरूर आपको दिखाएंगे बनाना कि कैसे बनती है। ठीक है,
थैंक यू सो मच सर।
थैंक यू जी, अल्लाह
हाफिज़। अल्लाह ताला आपके हुनर में और इजाफा करे।
आमीन सुमा आमीन
इंशाल्लाह।
ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा खवातीन को मैं बताता चलूं, और उससे पहले देखिए कॉल कितनी प्यारी थी कि छोटी सी मासूम सी बच्ची का इन्होंने जिक्र करा आपने। अल्लाह ताला उसे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और एक लंबी जिंदगी उसको अता फरमाए। फिश स्टिक, जब पैन हमारा ग्रिलर बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो हमने रख के इसको छोड़ देना है। इसको बार बार स्पून से या चम्मच से इसको हिलाना नहीं है, क्योंकि अगर इस स्टेज पर खवातीन इसको हिलाती हैं या घर का जो भी मेम्बर इसको बना रहा है तो फिश वो कच्ची होती है और मैरिनेट होके ये ऑलरेडी इतनी सॉफ्ट हो चुकी है कि टूट जाएगी। तो एक साइड इसको अच्छी तरीके से पक जाने दें। जब उस लेयर नीचे की लेयर जब पक जाती है तो इसके टूटने के चांसेस 0 पॉइंट हो जाते हैं। लेकिन अगर वो कच्ची रह जाए किसी भी तवज्जो से या किसी भी वजह से या किसी भी गलती से, तो जब आप इसको पलटेंगे या इस स्पून का इस्तेमाल होगा तो ये टूट जाएगी। कोशिश करें कि इसको एक साइड अच्छी तरीके से पक जाने दें, और उसके बाद ज़रा सा एक पीस उठा के आप देखें कि फिश आपकी अगर पैन में चुपकी भी है तो आप उसको ना छेड़ें, उसको पकने दें, क्योंकि जैसे जैसे ये फिश पकती जाएगी ऑटोमेटिक ये पैन को छोड़ देगी। जब जिस वक्त ये कच्ची होगी तो ये चुपकी रहेगी उस पर, ये इसकी क्वालिटी है फिश को चेक करने की। तो आपने करना सिर्फ ये स्पून से ऐसे उठा के आपने सिर्फ देखना, ये देखें मैं स्पून लगा रहा हूँ तो फिश इसमें चुपकी भी है। तो जैसे जैसे ये देखें जो हिस्सा इसका पकता जा रहा है वो हटता जा रहा है, तो ये चीज़ आपने चेक करनी है इसकी। अगर ज़रा सी भी ये चुपकी भी लगे आपको तो प्लीज़ इसको कुछ भी ना कीजिएगा, और जब देखें कि हाँ स्पून से बहुत आसानी से हट जाती है तो आपने सिर्फ करना ही है कि एक स्लाइसर को उल्टा करके इसको उठाना है, दूसरा स्लाइसर ऐसे रख के और सॉफ्ट हैंड से इसको टर्न कर देना। आप फिश पे कलर देख लें आप कि आपकी जो ग्रिल कलर है वो कितना खूबसूरत आ चुका है इसके ऊपर। और इसी तरीके से अब हम दूसरा पीस को भी चेक करेंगे कि दूसरा पीस हमारा, क्योंकि दोनों पीस हम याद हैं कि एक साथ हमने डाले तो यकीनन दोनों पीसीस पे कलर भी एक साथ आया होगा। तो करना हमें स्लाइसर को टर्न करके इस्तेमाल, सीधा ऐसे स्लाइसर का इस्तेमाल नहीं होगा, टर्न होगा, और उसके बाद हमें इसके ऊपर रखे और ये देखें ये दूसरा साइड। अब दोनों साइडेस पे कलर आप देख लेंगे, जो ग्रिल का अमूमन रेस्टोरेंट्स में जो कलर आता है शेप वो वन साइडेड पे आ चुका है। उसकी वजह ये कि पैन हमारा गर्म है और हमने ज़्यादा इसको स्पून नहीं लगाए, अगर हम इसको छेड़ते हैं बार बार तो फिश अंदर से कच्ची रह जाएगी और टूटने के चांसेस हैं। इस स्टेज पे हम इसके फ्लेम को थोड़ा सा स्लो करेंगे ताकि जो टेक्सचर इसका बने वो अच्छी तरीके से बन जाए। और ये जो ग्रेवी जो हमने बनाई थी इसकी सॉस, अब हम बारी है इस ग्रेवी को थोड़ा थोड़ा करके इसी पीस के ऊपर डालने की ताकि इसका जो अरोमा है वो अच्छी तरीके से फिश के अंदर जब्ज हो जाए। थोड़ा सा स्मोक बनेगा और ये स्मोक अमूमन वो अरोमा है जो आपके घर को महका देगा। और जैसे ही आपकी फैमिली अंदर दाखिल होंगे घर के तो उनको अंदाजा हो जाएगा कि बाकी किचन में कोई स्पेशल चीज़ बननी है, कि वे स्पेशल लोग के लिए स्पेशल चीज़ें बननी चाहिए। और आपकी फैमिली मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा स्पेशल है इस दुनिया में, तो प्लीज़ अपनी फैमिली को वो चीज़ें दें कि जिसके वो हकदार हैं। इसके साथ एक कॉल है वो भी लेना। अच्छा, इस स्टेज पर हमने इसको दोबारा टर्न करना है। एक कॉल है इसके साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जाकिर साहब बात कर रहे हैं?
जी जाकिर बात कर रहा हूँ।
आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है।
बहुत शुक्रिया।
बस बात करनी है, वो समझ नहीं आ रही क्या करूँ।
प्लीज बात कीजिए, आपकी कॉल मिल गई है मुझसे।
आप केक बनाना सिखा दे।
क्या बनाना?
केक, सादा केक।
जी जरूर, वो जरूर आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है।
और कोई फिश की अच्छी अच्छी रेसिपी भी बता दे।
किसकी अच्छी रेसिपी?
फिश की
आज की नहीं देख रही है, आज मैं फिश स्टेक बना रहा हूँ आपके लिए।
वो लाइट गई हुई है।
अच्छा, लाइट गई हुई, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन इसको रिपीट में जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही यूनिक टच में दे रहा हूँ, बिल्कुल अमेरिकन स्टाइल का।
प्रोग्राम बहुत अच्छा है,
बहुत शुक्रिया।
लाहौर आए
नहीं तो खुशी की बात है कि पहली दफा कॉल मिलाई और मिल गई।
और क्या बात, क्या बता।
चले जी, बहुत शुक्रिया देने का और पसंद करने का और कॉल पे बात करने का, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, नूरीन की जो मेल थी उसमें उन्होंने पूरी टीम का भी शुक्रिया अदा करा है और अप्रिशिएट करती हैं बहुत ज़्यादा वो हमारे प्रोग्राम को। और जो कॉल का उन्होंने बताया कि दौरान प्रोग्राम जब कुकिंग हो रही है उस टाइम जब कॉल आ जाती है तो वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो नूरीन, मैंने आपको बता दिया है कि नूर लाइफ का मतलब क्या होता है, तो उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ जाएँ और इसको अंडरस्टैंड कर लें कि छोटी छोटी कॉलें होती हैं, इससे शौक बढ़ता है। अच्छा जी, उसके बाद रिजवान लाहौर से लिखते हैं। जाकिर भाई, आप लाहौर आए, हमें बहुत अच्छा लगा। रिजवान कहते हैं, जाकिर मैं आपका प्रोग्राम बाकायदगी से देखता हूँ और आपकी बनाई हुई बहुत सी डिशें बना चुका हूँ। जाकिर भाई प्लीज़ टेबल अरेंजमेंट के बारे में बताएं और कार्विंग के मज़ीद प्रोग्राम करें। तो कार्विंग के इंशाल्लाह ताला मज़ीद प्रोग्राम ज़रूर आएंगे और आपकी जो रिक्वेस्ट है टेबल अरेंजमेंट, तो इंशाल्लाह ताला वो भी हम आपको दिखाएंगे कि एक राइट वे पे डाइनिंग टेबल या लंच टेबल को अरेंज करना, कि आपकी कटलरी, क्रॉकरी, प्लेट, वाइन ग्लास, ग्लासेस वगैरह कहाँ आते हैं और कैसे रखे जाते हैं। और इसी के साथ निगत खान की कराची से हैं। निगत लिखती हैं, जाकिर भाई मैं मलेशिया से कराची आई हुई हूँ और आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखती हूँ, प्लीज़ मुझे चॉकलेट सूफले की रेसिपी मेल कर दें। अगर मेल नहीं कर सकते तो चॉकलेट सूफले बनाना एक दिन पहले अनाउंसमेंट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला जी, जैसे ही मैं बेकरी शुरू करता हूँ तो उसके अंदर ये मूस और चॉकलेट और इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें वो आपके लिए आएंगी। और हमारे पास कुछ ईमेल हैं जिनके नाम नहीं है और जिनके शहरों के भी नाम नहीं है, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा अपने उन मेल करने वाले ख़वातीन हज़रात से कि जब भी आप मुझे मेल करें तो उसमें थोड़ा सा अपना हवाला ज़रूर दे दें कि आपका नाम, किस शहर से आप बात कर रहे हैं, किस इलाके से बात कर रहे हैं और आपका एरिया क्या, ताकि हमें उसको देखने और अपने रिकॉर्ड में रखने में आसानी हो। जिन मेल पे या जिन खत में नाम नहीं होता या शहर की कोई डिटेल नहीं होती तो उनको हम रिकॉर्ड में हम नहीं ला सकते, तो वो मजबूरन हम रिकॉर्ड से हटा देते हैं। लेकिन जिनका पूरा डेटा हमारे पास होता है तो उसको हम अपने रिकॉर्ड में रखते हैं। तो ये थी कुछ बातें जो मेल के हवाले से मैंने आप लोगों के साथ करी। और स्टेक की बारी है अब दोबारा टर्न करने की। शुरू में मैंने आपको बता दिया था कि जो पैन होगा वो गर्म होना चाहिए, जब दो साइड हम चेंज कर चुके हैं तो उसके बाद हमें इसको स्लो कर देना है ताकि इसकी हीट अंदर तक का जो मीट है वो पक जाए। ये देखिए और इस स्टेज पे दोबारा थोड़ा सा ये और इसी के साथ हम तैयारी कर लेते हैं इसकी ड्रेसिंग की। ड्रेसिंग के लिए थोड़ा सा मैं ले रहा हूँ इसमें ऑयल तकरीबन हाफ टेबल स्पून के बराबर ताकि पैन जो है हमारा वो ग्रीसी हो जाए ऑयली हो जाए, इससे ज़्यादा हमने नहीं लेना है। और फिश स्टेक जो है हमारे कंप्लीट हैं क्योंकि चखली देखें वही कलर आ चुका है जो किसी अच्छे घरेलू रेस्टोरेंट में आप जाएं वहाँ पे स्टेक या फिश स्टेक ऑर्डर करें तो एग्जैक्टली वही कलर आ चुका है इसके अंदर। अच्छा जब जैसे ही हमारा पैन थोड़ा सा रेडी हो जाए और ग्रीसी हो जाए तो हमने इसको इसके अंदर ऐड करना है। ये हमारे पास क्रीम है फ्रेश क्रीम जो बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाती है। इसके साथ एक कॉल है वो भी ले लें। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम। हेलो
जी। हेलो
जाकिर भाई बात कर रहे हैं?
जी जाकिर बात कर रहा हूँ।
अच्छा मैं मिसेज मजीद बात कर रही हूँ कराची से।
मिसेज
मजीद।
जी मिसेज मजीद क्या पूछना चाहेंगे?
अच्छा अभी आप जो फिश बना रहे हैं?
जी फिश स्टेक बना रहा हूँ मैं।
जी वो जो ग्रिल है आपके पास?
जी जी।
तो ये कहाँ से मिल सकती है?
ये जो बर्तन बेचने वाले हैं या जो शॉप है जहाँ पे बर्तन वगैरह मिलते हैं चूल्हे वगैरह मिलते हैं
अच्छा
वहाँ से आसानी से आपको मिल जाएगी।
जी और आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है।
बहुत शुक्रिया जी।
और जो भी आप बनाते हैं मैं बहुत सी ट्राई कर चुकी हूँ।
बहुत शुक्रिया।
निहारी भी आपकी बहुत ही अच्छी बनती है, मैंने 2-3 दफ़ा बनाए हैं।
बहुत शुक्रिया।
और दूसरी बात ये करनी है कि अगर कुछ किसी चीज़ में नमक तेज़ हो जाए
अच्छा
तो इसका क्या इलाज हो सकता है?
अगर नमक तेज़ हो जाए, एक तो नमक वो तेज़ होता है जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाता है जो बिल्कुल हलक से भी नहीं उतर सकता, तो उसके लिए तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप सारा गोश्त निकाल के और ग्रेवी को हटा दें और दोबारा ग्रेवी बना के दोबारा, क्योंकि उतना जो जो अगर इस मकदार में नमक तेज़ हो जाता है तो उसको कोई भी कम नहीं कर सकता।
अच्छा।
हाँ एक नमक वो होता है जो हल्का सा स्लाइडली तेज़ हो जाता है जो ज़रा सा ज़बान को लगता है, तो उसके अंदर अमूमन जो हम लोग करते हैं कि हम उसके अंदर ग्रेवी को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि उसका जो टेक्स्चर है वो इक्वल हो जाए, मीट को हम हटा लेते हैं ताकि मीट ओवर कुक ना हो जाए और उसके बाद थोड़ी सी ग्रेवी को हम बढ़ा लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो उसके अंदर थोड़ी सी आटे की डोई बना के वो डाल देते हैं ताकि उससे भी वो नमक उसमें जब्ज हो जाता है। और बेहतरीन तरीका जो हम लोग प्रोफेशनल वे में करते हैं कि अगर हमसे ज़रा सा भी नमक तेज़ हो जाए या मसाला तेज़ हो जाए तो हम इमीडिएटली जो पका हुआ गोश्त होता है वो उस पैन से या पतीले से निकाल लेते हैं, साइड में रखते हैं, जो ग्रेवी बचती है उसको दोबारा हम थोड़ा सा गाढ़ा कर लेते हैं यानी कि उसको बढ़ा के, तो ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। स्टेक मेरे तैयार हैं, मैं इसको करता हूँ डिशार्ड और उसके बाद लेते हैं एक ड्रेसिंग बहुत खूबसूरत सी और वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का तो लेते हैं एक छोटा सा। से वापस आ चुके हैं। स्टेक जो थे फिश के वो तैयार हैं। जी हाँ इसकी ड्रेसिंग जो बन रही थी वो थोड़ी सी मैं आपको बताता चलूं कि मैंने इसमें तकरीबन आधा कप जो फ्रेश क्रीम होती है वो थोड़ी सी ऑयल के साथ और जी हाँ इसमें 1/4 कप मैंने पानी का इजाफा करा है ताकि इसका जो टेक्स्चर है क्रीम का वो थोड़ा सा नरम हो जाए। और उसी के साथ ये जो बचा हुआ इसकी जो ड्रेसिंग थी जो सॉस था जिसमें हमने मैरिनेट करा था वो हम ऐड कर देते हैं अपने इसी क्रीम के अंदर और इसको हम दे देते हैं अच्छी तरीके से मिक्स, और चंद मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे। और ड्रेसिंग हमारी ये कंप्लीट हो चुकी होगी और ये चली जाएगी आपके फिश के साथ। तो देखिए, एक साथ आपने फिश भी कंप्लीट कर ली, उसकी ड्रेसिंग भी तैयार हो गई और टाइम जो कंज्यूम आपने नोट कर लिया। तो कोई भी चीज़ को बनाने के लिए जितना हम सोचेंगे कि यार इसको हम ऐसे बना लें तो इतनी देर लगेगी, और इतनी चीज़ नहीं बन सकती इतने से टाइम में, और ये नहीं बन सकती, तो ये गलत है। अगर हम काम शुरू कर दें तो यकीन माने वो ज़्यादा देर नहीं लगती इसको बनाने में और उसको करने में। फ़र्क सिर्फ ये है कि अगर एक चीज़ को हम समझ लें कि यार ये चीज़ बनानी है हमें इतनी देर में, ये तैयार है हमारी इसकी ड्रेसिंग। और ड्रेसिंग का तरीका ये है कि आप स्पून से थोड़ा सा इस तरीके से वन साइडेड, एक साइड पे हमने इसको ड्रेसिंग को कवर कर देना है एक साइड से, और एक साइड हमारी सादा रहेगी। जी हाँ, फिश स्टिक विद ड्रेसिंग। अब ड्रेसिंग में आपको याद है कि जो हमने चीज़ें डाली थी तो उसका अरोमा इसके अंदर शामिल है, और क्रीम का हमने इजाफा कर लिया है, तो उसका जो टेक्सचर है जब हम फिश को सर्व करेंगे अपने मेहमानों को, तो जो फिश का ड्राइनेस या जो ड्राई हो जाती है फिश, वो इस सॉस के साथ मिलकर बड़ी अच्छा क्रीमी फ्लेवर हो जाएगा। और उसमें क्रश ब्लैक पेपर का अमल है, तो क्रश ब्लैक पेपर इससे वन ऑफ द बेस्ट थिंग है ग्रिल के आइटम में। भले आप स्टेक बनाएं, फिश ग्रिल करें, प्रॉन ग्रिल करें, या साबुत बकरे को ग्रिल करें, या एक्स वाई जेड, पूरी दुनिया में जो भी ग्रिल का कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पे ग्रिल का नाम आता है, उसमें क्रश ब्लैक पेपर का इस्तेमाल ज़रूर होता है। तो वो कॉम्बिनेशन उसके साथ आ गई, वो आपने देख ली। अब हम चलते हैं अपनी सैलड की तरफ। तो सैलड के लिए आप नोट कर लें हर चीज जो चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें। जी हाँ, मेरे पास हरा प्याज है, गाजर है, आइसबर्ग जो मैं बता चुका हूँ अपने देखने वालों को कि बहुत आसानी से मिल जाती है मार्केट में, और पाकिस्तान, पहले ये पाकिस्तान में नहीं होती थी लेकिन अब माशाल्लाह ये इसकी पैदावार पाकिस्तान में हो रही है, तो इस वजह से ये हर जगह बहुत आसानी से मिल जाती है। इसके साथ एक कॉल है, वो भी ले लें। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम अस्सलाम।
शायद जाकिर दानिश एडवोकेट बात करें फ्रॉम कराची।
नाम दोबारा बताएंगी?
सर मेरा नाम दानिश है, आई एम फीमेल।
अच्छा जी, दानिश जी, दानिश बोले।
एक्चुअली मसला ये था कि मुझे, खैर प्रोग्राम की तारीफ लोग करते हैं और ये बड़ी फॉर्मल सी बात है, इसलिए मैं करके वक्त जाया नहीं करूंगी।
नहीं नहीं, आप बोले।
अच्छा सर, मुझे ये मालूम करना था कि आपने शामी कबाब की जो रेसिपी दी थी,
जी जी,
तो उसमें मुझे ये मालूम था कि जब आपने सारा मिक्सिंग कर लिया मिक्सचर में, तो आपने अंडा फ्राई में डाला था फ्राई करने के वक्त, या उसके मिक्सचर में डाल के जो ना फिर आपने टिकिया बनाई थी?
देखिए, दो तरीके हैं शामी कबाब के। खवातीन, जब वो पूरा टेक्सचर कीमे का, दाल का हमने पीस लिया था, हम उसमें भी अंडा ऐड करेंगे ताकि कीमा और दाल एक जान हो जाएं, और थोड़ा सा अंडा हम फेंट के अपने पास रख लेंगे, और जब कबाब हमारे शामी कबाब बन जाएंगे तो हल्के से अंडे में डुबो के और पैन पे फ्राई कर लें, क्योंकि कीमा याद रहे कि वो पक चुका है, दाल पक चुकी, तो उसमें गलाने वाली कोई भी चीज नहीं है, सिर्फ उसको हमने शेप देना है थोड़ा सा कलर का सिका हुआ। तो उसके लिए कोई भी सिंपल पैन के ऊपर अंडे में थोड़ा सा डुबो के हम उसको तल लेंगे, तो हमारे शामी कबाब तैयार हो जाएंगे।
अच्छा, मतलब दोनों सूटों में डाल,
दोनों सूटों
में डालना, हाफ आपको फ्राई में भी डालना है।
एग्जैक्टली। और सेकंड जो शामी कबाब है, जो अमूमन शादी ब्याह में आपने देखा होगा कि शामी कबाब की डिशेज होती हैं, और गोल गोल शामी कबाब फ्राई करे हुए होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि बाकी वो हर चीज वैसे ही बनाते हैं, पर आखिरी का काम वो ये होता है कि वो बजाय पैन फ्राई के डीप फ्राई कर देते हैं उन शामी कबाब को, और उसमें अंडा नहीं लगाते, वो टिकिया बना के और बना के रख लेते हैं 2-3-4 घंटे पहले, ताकि वो खुश्क होकर ड्राई हो जाए, जैसे नरगसी कोफ्ते बनते हैं, और उसको ऑयल में फ्राई करके और उसको सर्व कर देते हैं।
अच्छा, इसको शैलो फ्राई करना है?
शामी कबाब जो घर के लिए आप करें वो शैलो फ्राई होगा।
एक्चुअली जिस वक्त आप बता रहे थे उसके लास्ट में मेरी लाइट चली गई थी।
अच्छा,
और आज भी यकीन करें मैंने अपना ऑफिस ऑफ किया, और फिर स्पेशली आपके लिए मैं घर पे रुकी के मैंने कहा जरा मैं पूछ लूं, मुझे बहुत सी चीजें आपसे पूछनी थी।
जी जी।
बेसिकली प्रोफेशन में एडवोकेट हूँ, इतना टाइम हमारे पास होता नहीं कि हम बुकिंग करें, लेकिन बिलीव मी के कुछ चीजें ऐसी जो मैंने स्पेशली आपकी ट्राई की, खासकर गुलाब जामुन।
अच्छा।
बहुत डिलीशियस बने थे, बिलीव मी कि मेरी फैमिली से बार बार ये फरमाइश आ रही है यही बना कर दो।
अच्छा, बने आसानी से? दे
बहुत जबरदस्त, यकीन करें कि मैं कह रही कि बाजार से ज्यादा अच्छे बने।
चले जी, कोशिश मेरी यही है कि आपको वो चीजें इजी करके दे दूं जो बाजार में आपको लगे कि जी ये बहुत महंगी है और बहुत मुश्किल से बनती है।
लेकिन सर उसका जो खोया है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है।
नहीं, इतना कॉस्टली नहीं है।
अच्छा, आप यकीन करेंगे 400 रुपीज का जो मुझे पर केजी पड़ा।
400 रुपए किलो? नहीं, शायद आपको रेट किसी ने गलत दिए।
मैं भाई जो है वो मेरे खुद परचेज करके लिया है भादराबाद से।
अच्छा।
क्योंकि मैं एक्चुअली धोराजी में रहती हूँ और आई एम बिलोंग टू मेमन फैमिली।
जी जी।
तो हम लोगों को स्पेशली होता है कि जो चीज मुझे ईद के सेकंड डे मैंने बनाया, ईद के फिफ्थ डे मैंने बनाया।
ठीक है।
तो मतलब वो चूंकि भादराबाद पे जो शॉप है मिठाई की, वही हमने लिया और 400 रुपीज पर केजी मुझे मिला। तो मतलब इससे मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन ये कि मैं कह रही हूँ आम पर्सन उसको दे कांट अफोर्ड इट ना, कि उसे नहीं अफोर्ड कर सकते।
नहीं, तो अब देखें कि एक पाव खोए में, मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर वो 400 रुपीस किलो है तो एक पाव खोया आपका बन जाता है तकरीबन 120 रुपए 125 रुपए का। ठीक है। उस एक पाव खोए में जब सारी चीजें बनाने के बाद और शीरे के साथ आप बना के बनाए तो तकरीबन 1.5 से 2 किलो के करीब जो गुलाब जामुन है वो तैयार हो जाएंगे।
वैसे एक जो मैंने एनालाइज किया कि हाफ के जी में से 2 किलो जो है ना मेरे उतरे हैं।
2 किलो से ज्यादा बनेंगे,
मतलब मोस्टली मैंने जो अंदाजा लगाया वो 2 किलो मेरे उतर गए। तो आधा किलो में अगर आप देखें तो जो मार्केट रेट है उससे मुझे काफी यानी कि सस्ता मुझे लगा।
ठीक है। नहीं, इससे भी देखें, मार्केट में एक तरीका और होता है कि वो शीरा
शीरे के साथ उसको,
शीरे के मतलब साथ उसको देते हैं,
मेजरमेंट करके देते हैं।
हाँ, तो अगर आप बड़े तरीके से इसको बनाए घर के अंदर और इसकी कॉस्ट आप निकालें तो यकीन माने ये आपको 50% प्रॉफिट पे बन जाएगा।
बहुत सस्ता बना मैं, लेकिन ये आम पर्सन जो हमें ये कहते हैं कि जी बहुत कॉस्टली, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि स्पेशली जो खोया है इसको आप लस्सा या खोया कहते हैं, तो आम खोए से हम इसको नहीं बना सकते हैं क्या?
नहीं, आम खोए से नहीं बनेगा।
ओके, अच्छा सर, एक लोग मुझे कहते हैं कि मिल्क पाउडर से भी बनता है, तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मिल्क पाउडर एंड लस्सा खोया?
अच्छा, मिल्क पाउडर का मैं आपको बता दूं उसकी वजह क्यों, कि वो कहाँ इस्तेमाल होता है, क्यों बनता है। पाकिस्तान से बाहर यूरोप के कंट्रीज में, अमेरिका, कनाडा, कहीं भी आप चले तो वहाँ खोया नहीं मिलेगा आपको। तो वहाँ जो हमारी पाकिस्तानी फैमिलीज रहती हैं वो बेचारे मजबूर होते हैं, तो वो मजबूरन पाउडर वाला दूध से बनाते हैं। कुछ बनाते हैं पहले खोया, फिर उसको कोशिश करते हैं, लेकिन वो चीज नहीं बनती।
तो
ये वहाँ की इजाद है, पाकिस्तान की इजाद नहीं है ये।
तो कभी जो है मतलब कोई ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें आप ये वाला भी हमें फॉर्मूला बताइए कि किस तरह से उसे मेकिंग करते हैं।
देखें, अगर हर चीज में एक ही दिन या एक ही साथ बता दूं तो शायद समझना मुश्किल हो जाएगा। मैंने आपको गुलाब जामुन का तरीका बता दिया, इसी तरीके से अब दूसरी मिठाइयां आ रही हैं, रसमलाई हैं, चमचम है, बर्फी है, ये सब आ रही हैं। जब मतलब ये सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी तो फिर मैं इसकी
मैं आपसे नहीं कि तो रिसेंटली कुछ बताओ।
हाँ,
दो चार महीने के बाद, लेकिन इसे बताइए जरूर
जी। जब ये सारी चीजें कम्प्लीट हो जाएंगी तो फिर मैं इसके बाद हम टर्न करेंगे कि जी खोया कैसे बनता है, रबड़ी कैसे बनती है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, इसके तरीकेकार क्या क्या है। सबसे पहले आप बनाना देख लें, बनाने के बाद फिर जो मेजर चीजें हैं उसकी तरफ आते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपके मशवरों का, खुशी हुई कि आपने कुछ वो पॉइंट्स हमें दिए हैं जो दूसरे जो सुनने वाले और देखने वाले उनके जहनों में भी थे ये पॉइंट। अच्छा, अब बन रही है फ्रेंच सैलेड, तो फ्रेंच सैलेड के लिए मैं बताता चलूँ आपको कि आइसबर्ग बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाती है। हमने वो एक पूरा फूल जो है आइसबर्ग का वो काट के और उसी में एक अदद गाजर, गाजर को हमने थोड़ा छोटा करके स्लाइस कर लेना है ताकि सैलेड के अंदर वो छोटे स्लाइस अच्छे लगें, बहुत बड़े स्लाइस नहीं होने चाहिए। इसी तरीके से टमाटर्स का भी मैंने एक टमाटर्स के तकरीबन 4 से 5 पीसेस करके स्लाइस करके वो ऐड करे हैं इसके अंदर सीड के साथ। इसके बीज हमने रिमूव नहीं करे हैं टमाटर्स के, याद रहे। और उसी के साथ ये गाजर को हम छोटे स्लाइस में, स्लाइस देख लें आपके सामने बहुत छोटे स्लाइस हैं, ये हम ऐड कर रहे हैं अपने सैलेड में। और इसी के साथ कुकम्बर का में इस्तेमाल होगा और ग्रीन ओनियन का थोड़ा सा टच होगा और फिर एक बहुत अच्छी चीज़ की ड्रेसिंग बनेगी, उस ड्रेसिंग में ये फोल्ड होगा और उसके बाद ये सर्व होगा। अच्छा, इसका ऑप्शन मैं आपको देता चलूँ कि यूरोप वगैरह में जब ये सैलेड बनती है, फ्रेंच सैलेड के बहुत सारे स्टाइल हैं, बहुत डिफरेंट स्टाइल हैं। उसका इशारा मैं आपको इस तरीके से दे दूँ कि जैसे पाकिस्तान में दिल्ली बिरयानी अलग है, बॉम्बे बिरयानी अलग है, सिंधी बिरयानी अलग है, वो सारी बिरयानी, इसी तरीके से फ्रेंच सैलेड जो है, फ्रेंच सैलेड फ्रांस में सैलेड पे बहुत ज़्यादा जोर होता है, उनकी कुकिंग जो है बगैर वेजिटेबल के या बगैर सैलेड के कम्प्लीट नहीं होती। तो फ्रेंच सैलेड के बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल हैं, इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी कि आप लोग को वो सारे स्टाइल में दे सकूँ, ताकि जब भी आपके घर में दावत हो या आपका जी चाह रहा हो अपने घर को एक अच्छा सा माहौल देने का, यानी कि खूबसूरत सी डाइनिंग टेबल अरेंज करने का, तो आपको वो सारी चीज़ें आपको पता हो कि क्या चीज़ कैसे बनती है। और आप चाहें तो इसके अंदर चीज़ का भी इजाफा कर सकते हैं, जो लोग चीज़ पसंद करते हैं, चीज़ स्लाइस या कॉटेज चीज़ या मज़रेला चीज़ और पामेज़ान, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत आसानी से सिस्टम अब पाकिस्तान में मिलना शुरू हो गई हैं। कुकम्बर के भी हमने यही करना है कि जिस साइज़ के हमने गाजर के स्लाइस करें या जिस साइज़ के हमने खीरे के उसके टमाटर के स्लाइस करें, उसी हिसाब से उसी साइज़ को जहन में रखते हुए हमने कुकम्बर को भी काटना है, ताकि हर चीज़ इक्वल लुक दे हमें। यह ना हो कि जी टमाटर तो बहुत छोटे हैं और गाजर के बड़े स्लाइस हो गए, या गाजर बहुत छोटी है और खीरे के हमने साबुत पीस डाल दिए, तो वो जो लुक है उसकी वो बेशेप ना लगे। एक दरमियाना खीरा कुकुम्बर, और याद रहे प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने देखने वालों को कि जब भी सैलेड के लिए आप खीरा लें तो कोशिश करें कि वो पतला हो और छोटे साइज़ का हो। जितना मोटा और जितना बड़ा खीरा होगा उसके बीज उतने मोटे हो जाते हैं और उसका जायका उतना ही ख़त्म हो जाता है। ये ना हो कि जल्दी में आप या दुकानदार आपको जल्दी जल्दी में मोटे मोटे खीरे दे दे और उसके बीज जब सैलेड में शामिल हो जाए तो वो आपको बड़ा बुरा लगे। अच्छा जी, इसके साथ ही इसको टच दे रहा हूँ मैं सॉल्ट का और साथ में इसको टच दे रहा हूँ ब्लैक पेपर का, ठीक है सबसे पहले। और इसमें ड्रॉप करूंगा मैं थोड़ा सा ऑयल, ऑयल तकरीबन समझ लें 2-3 टेबल स्पून, जो ऑयल आपको पसंद हो। सैलेड ऑयल मार्केट में मिल जाता है, ऑलिव ऑयल मार्केट में है और ड्रेसिंग ऑयल मार्केट में है। इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है सिर्फ इस सैलेड को, और इसके बाद इसकी ड्रेसिंग बनेगी, वो ड्रेसिंग हम इसकी सर्व करेंगे इसके साथ। ये देखें, ये हम एक अपनी प्लेट पे सर्व करते हैं इसको। बारी है अब इसकी ड्रेसिंग बनाने की, तो ड्रेसिंग के लिए आप नोट कर लें, ये मेरे पास मैंने क्रीम है जो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी मार्केट में, तकरीबन आधा कप के बराबर में से मैंने क्रीम ले रहा हूँ, और उसी के साथ टमाटो केचप मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर, और इसको हम थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा ब्लैक पेपर, और इसी के साथ कुटा हुआ ब्लैक पेपर यानी कि जो ब्लैक पेपर क्रश है वो हम इसमें ऐड करेंगे, और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। ये वो ड्रेसिंग भी आप समझ लें कि हो गई है, कि जो अच्छे रेस्टोरेंट्स में सैलेड के साथ आपको मिलती है, बड़ी अच्छी सी लगती है उमे वाली, और आप लोग सैलेड पे डाल के बड़े मज़े से खाते हैं, कि ये वो ड्रेसिंग हो गई बड़े मज़े वाली। इसकी भी बहुत ज़्यादा फरमाइश थी मेरे पास कि सिर्फ वो भी बनाना बताएं, कि जो रेस्टोरेंट्स में हम जाते हैं तो सैलेड बार के ऊपर एक लाल कलर की ड्रेसिंग होती है और बड़ी अच्छा सा जायका होता है। ये लेने के बाद हमने स्पून से इसको इस तरीके से जगह जगह ड्रॉप कर देना है। वक्त हुआ है हमारे रेसिपी कार्ड्स का, साथ साथ उसको भी देखते चलें। ये आपकी बन गई फ्रेंच ड्रेसिंग, इसको मैं हटा लेता हूं एक तरफ ताकि आप कैमरे के लुक से इसको देख लें। तीनों डिशेस आपके सामने हैं, चलते हैं अपने रेसिपी कार्ड की तरफ। मेरे वो देखने वाले जिनसे अगर कुछ मिस हो गई हो तो वो दोबारा उसको नोट कर लें। चिकन हरा मसाला, चिकन हरा मसाले के लिए मैंने यूज करें है चिकन आधा किलो, ब्रेसार के दही एक पाव, अदरक लहसुन का पेस्ट 2-3 टेबल स्पून, हरी मिर्च 6-7 अदद, प्याज 1 अदद, हरा धनिया 1 गड्डी, गरम मसाला पाउडर हमने लिया था 1 टीस्पून, जीरा पाउडर हमने लिया था 1/2 टीस्पून, साबुत गरम मसाला हसबे जरूरत जो मैं आपको बता चुका हूँ कि उसमें 2-3 चीज़ें डालेंगे, ज़्यादा नहीं, नमक हसबे जायका था, ऑयल हमने लिया था इसमें तकरीबन 1/4 कप, फिश स्टेक में हमारे पास 2 स्लाइसेस सुरमई फिश के, ताज़ा क्रीम थी हमारे पास, फ्रेश क्रीम 1/2 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, जो फिश को मसाला लगाते थे मैंने यूज़ करा था, लेमन था 4 अदद, मस्टर्ड पेस्ट था मेरे पास 1 खाने का चम्मच, वॉस्टर सॉस था मेरे पास 4 खाने का चम्मच, कुटी हुई काली मिर्च थी 1 टेबल स्पून, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च और नमक हसबे जायका था जो आपका फ्लेवर हो, और नमक तो आपको मालूम है कि अपने जायके के हिसाब से रखें, ऑयल हमने इसमें लिया था तकरीबन 1/4 कप से कम, फ्रेंच सैलेड के लिए जो चीज़ मैंने यूज़ करी है उसके अंदर थी मेरे पास टमाटर 1 अदद, खीरा 1 अदद, हरा प्याज 1 अदद, गाजर 1 अदद, आइसबर्ग के पूरा एक बंच, मेयोनेज़ क्रीम थी मेरे पास 1/2 कप, टमाटर केचप थे 3 खाने के चम्मच, काली मिर्च थी हसबे जायका, नमक थी हसबे जायका। उम्मीद है तीनों डिशेस आपने देख ली कलर कम्बिनेशन के साथ, फिश स्टेक आपके सामने है विद वाइट कवर के, और वक्त हुआ है इजाज़त लेने का, नेक दुआओं के साथ इंशाल्लाह ताला कल हाजिर होंगे आपकी फरमाइशों और अपने साल के साथ, अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।